आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। एनीमिया दूर करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अगले 4 साल तक मिलेगा निशुल्क फोर्टिफाइड चावल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज पंजीयन विभाग के नवीन तकनीक पर विकसित सॉफ्टवेयर संपदा 2.0 का करेंगे लोकार्पण। क्रिकेट में भारत की पुरुष टीम ने बांग्लादेश और महिला टीम ने श्रीलंका पर दर्ज की भारी जीत। और प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का निधन, प्रधानमंत्री सहित विभिन्न नेताओं ने किया शोक व्यक्त। अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत इस साल जुलाई से दिसंबर 2028 तक निशुल्क फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि इस पहल से एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की समस्या कम होगी। श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार के 100% वित्त पोषण के साथ इस योजना पर 17,082 करोड़ रुपए व्यय होंगे।
देश में एनीमिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ये दोनों बड़ी जो प्रॉब्लम्स विशेषकर महिलाओं में और वंचित वर्ग या गरीब वर्ग है, उन सब में ये जो प्रॉब्लम देखी गई है उसको बड़े पैमाने पे एड्रेस किया जा सके। तो देश में जो 50-60 वर्षों से जो प्रॉब्लम्स चली आ रही थी एनीमिया की और स्टंटेड ग्रोथ की, वो इससे सिग्निफिकेंटली दूर होगी।
इस चावल में निर्धारित मानकों के अनुसार आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिलाया जाता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज पंजीयन विभाग की नवीन तकनीक पर विकसित सॉफ्टवेयर संपदा 2.0 के ई पंजीयन और ई स्टाम्पिंग का शुभारंभ करेंगे। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट के सफल क्रियान्वयन और नोटिफिकेशन जारी करने से अब देश में मध्य प्रदेश दस्तावेजों के पंजीयन और ई स्टाम्पिंग के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हुआ है। श्री देवड़ा ने बताया कि इस साल अप्रैल में 4 जिले क्रमशः गुना, हरदा, डिंडौरी और रतलाम में पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ई पंजीयन और ई स्टाम्पिंग को सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में लागू किए जाने की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। इस सॉफ्टवेयर द्वारा संपत्तियों का अंतरण, लोन इत्यादि दस्तावेजों का पंजीयन पूर्ण रूप से डिजिटली ही किया जाएगा। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने लोगों तक सरकारी सेवाओं की निर्बाध पहुंच के लिए डिजी लॉकर के साथ उमंग ऐप को मिलाने की घोषणा की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इससे उपयोगकर्ताओं को एक ही जगह से कई सेवाएं प्राप्त करने की सुविधा मिल जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि उमंग ऐप सभी एंड्रॉयड फोन पर उपलब्ध है। इसकी सेवाओं का लाभ डिजी लॉकर ऐप के माध्यम से लिया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा है कि डिजी लॉकर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य आवश्यक दस्तावेजों का सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज प्रदान करना है। इंदौर को देश का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के लिए 100 दिन का विशेष अभियान चलाया जाएगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि दिसंबर से शुरू होने वाले इस अभियान के लिए नगर निगम और एनर्जी स्वराज फाउंडेशन समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। इस अभियान का नेतृत्व आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर और सोलर मैन ऑफ इंडिया डॉ. चेतन सिंह सोलंकी करेंगे। श्री भार्गव ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना और नागरिकों के बीच पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रयास करना है। अभियान में शहर की बिजली खपत में कमी लाना और 5 लाख से अधिक लोगों को ऊर्जा साक्षर बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं का सतत विस्तार हो रहा है। कोविड के समय उन्होंने जियो और जीने दो के सिद्धांत को चरितार्थ करके दिखाया। ग्वालियर में कल एक निजी अस्पताल के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया में कोरोना का हाहाकार मचा हुआ था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के संसाधनों और बौद्धिक क्षमताओं का उपयोग कर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया।
कोविड का कठिन काल याद इतना खराब समय पूरे दुनिया में हाहाकार मचा, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार तालियां बजाकर के जिनके बारे में उनने भारत के संसाधन के भारत की बौद्धिक क्षमता के भरोसे से जनता को विश्वास दिलाया, वो समान रूप से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया। उस विस्तार में हमको मालूम पड़ा कि हॉस्पिटल और डॉक्टर की कीमत क्या होती है।
विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश में केवल ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और रीवा में मेडिकल कॉलेज थे, अब प्रदेश में 14 सरकारी मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का कल रात मुंबई में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। श्री टाटा का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। आज उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। भारत के सबसे सम्मानित व्यापारिक दिग्गजों में से एक रतन टाटा अपने ट्रस्ट के जरिए पूरी तरह से परोपकारी गतिविधियों में शामिल थे। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण सहित कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि रतन टाटा का दृष्टिकोण बहुत व्यापक था। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाई। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में भारत ने कल रात दुबई में श्रीलंका को 82 रनों से हरा दिया। रनों के लिहाज से ये भारत की महिला टी20 विश्व कप के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत है। भारत ने पहली बल्लेबाजी करते हुए हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना के अर्धशतकों की बदौलत 172 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम 19 ओवर और 5 गेंदों में 90 रन पर ऑल आउट हो गई। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने दूसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में बांग्लादेश पर 86 रनों की शानदार जीत दर्ज की। नई दिल्ली में इस जीत के साथ भारत ने एक मैच शेष रहते 3 मैचों की श्रृंखला 2-0 से जीत ली है। भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 221 रन बनाए। नीतीश रेड्डी ने सबसे अधिक 74 रन बनाए, जबकि लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 135 रन बनाए। भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरा और आखिरी टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच शनिवार को खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में गेहूं और अन्य फसलों की कटाई के उपरांत फसल अवशेषों को खेतों में जलाए जाने को प्रतिबंधित किया गया है। मंडला जिले के नैनपुर में पुलिस द्वारा शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय नैनपुर में मैं हूं अभिमन्यु अभियान के तहत छात्र छात्राओं को इसकी जानकारी दी गई। इंदौर में किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग द्वारा जिले के सभी विकासखंडों में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। मुरैना में जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। अनूपपुर में मध्य निषेध सप्ताह के समापन कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने राजनगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल पर 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। खरगोन की पुलिस ने बैडिया और बिस्टान थाना क्षेत्र में 13 लाख रूपये से अधिक के गांजे के पौधे बरामद कर 2 किसानों को गिरफ्तार किया। दमोह जिले के चैनपुरा में ट्रक और ऑटो रिक्शा की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। कटनी के शासकीय कन्या महाविद्यालय संभाग स्तरीय अंतर जिला महाविद्यालय महिला कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल में जबलपुर ने नरसिंहपुर को हराकर स्पर्धा जीत ली। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।